Namaste Saraswati Devi Guru Anantaya Namaste. श्रीकृष्ण के हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम भक्ति नहीं करके हृदय सूख गया तब उन्होंने चंडाल से शुरू करके सबको इस प्रेम दिशा में अपूरण तो नाम प्रेम कमे बाड़ी जाए कलशे कलशे सोखे तो गुना आप लोग इतना प्रेम वितरण किया जितना सारे सिंचन करेंगे फिर खत्म नहीं नामे प्रेमे तरी गल जत जीव छो पड़ुआ नास्तिक आदि पड़िया महाप्रभु का नाम के माध्यम से कृष्ण प्रेम दिया सबको डुबाया था लेकिन जो पड़ुआ नास्तिक उनको ये बार स्पर्श किया नहीं क्यों पे हालत हुआ था शास्त्र मदे मत्त हुआ नाम ना लइलो अवतार सार तारा शिकार ना शास्त्र पर के अहंकार होकर अहंकार के कारण हरिनाम नहीं लिया और सारे अवतार का साथ चैतन्य महाप्रभु के समझाने इसलिए उनके चरण में आत्मसमर्पण कर दिया यह देखकर महाप्रभु को बहुत दुख हुआ देखिया दयाल प्रभु करण क्रंदन ताजे तरह के तार हो गए मनन यह देखकर महाप्रभु का बहुत दुख हुआ रोना आया तो उनको उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने प्लान किया एक योजना बना किया योजना से हेतु गुराचार लोहिला सन्यास मरण में मरिया रोए वृंदावन उन लोग को उद्धार करने के लिए वृंदा चेतन महाप्रभु सन्यास लिया और सन्यास लिए महाप्रभु के कष्ट देखकर यहाँ वृंदावन का ठाकुर रो रहा है महाप्रभु का लुटिया खाइया दिया भांडार उजारे आश्चर्य भांडार प्रेम शतगंगा महाप्रभु जो प्रेम का प्रेम लेके आया था वो भांडार कितना बड़ा है जिसको आदमी लूट रहा है खा रहा है वितरण कर रहा है भांडार दीदी पूरे खाली कर दिया भांडार उजारे लेकिन कितना दे रहा है उजर होना चाहिए अर्थात पूरे एम्प्टी होना चाहिए लेकिन ये भंडारे इतना आश्चर्य है जितना दे रहा है उतना सौ गुना ज्यादा बढ़ जाता उत्सव लीला प्रेम बन्ना चौधरी के बेराय त्रिविध बालक जीवा सवरे देवा सज्जन दुर्जन पंगु जर अंधगान प्रेम बन्या डुबाइल जगतर मन जगत डुबिल जीवे हईल बीज नाश তাহা দেখি পাঁচ জনের পরম উল্লাস জগৎ ডুবিল জীবের বীজ হইলে নাশ এতনা ডুব বীজ নাশ হইলে বীজ অর্থাৎ বীজ অর্থাৎ কর্ম কা ফল যে পৌধা মর যায় তার মরনে কে পহলে ও বীজ রাখে যাতে তাকি ও ফির পৌধা হোক ইসি তার আদমি যে মরতে উসকে কর্মফল সরকে যাতে तो कर्मफल के कारण से दूसरा शरीर है तो इस तरह चक्कर चलते हैं इतना प्रेम दिया ज्यादा दिन बीज पानी के अंदर रहेगा तो क्या होगा खत्म हो जाएगा तो इतना प्रेम बता तो सबका जीवन में कर्मफल नाश हो गया इसलिए पंच तत्व छ बहुत आनंद है, सबका सब उद्धार हो गया, सबको नाश जत जत प्रेम दृष्टि कर पंचजनी तत तत बाणिजल जत त्रिभुवन मायावादी कर्मनिष्ठ कृतार्किक गण निंद पाषंडी जत पड़ुआ अधम से सब महादक्ष धाइया पलाइल से बना ताशवारे छुते ना किसी दस के विरोध व्यस्त नहीं वो कहानी यह भी बता रहे हैं लेकिन जो मायावादी कम्युनिस्ट कुतार्किक निंद पाषंडी पड़ुआ ये लोग जब देखे बाण आ रहा है वो भाग के जा रहा है वो स्पर्श बाण के स्पर्श नहीं कर रहे कहा देखी महाप्रभु करें चिंतन जगो दुबई तो हम को जाता हूँ केहो केहो एराइल पृथिक कहल भंग सबा डुबाई थे पार्थिव किसी रह तो महापुरुष ने बाढ़ लेके सबको डुबाऊंगा ये प्रतिज्ञा किया लेकिन वो भाग के जा रहे हैं तो मरद प्रतिज्ञा भंग हो जाएगा क्या करेंगे तो कुछ प्लान करना पड़ेगा या तो बोली मोने किसी करिया विचार छन्नाथ आश्रम प्रभु कहला अंगीकार जब बीज वत्सर खिला गृहस्थ आश्रम पंच विंशति वर्षे कहला ज्योतिधर में सन्नास करिया प्रभु कहला आकर्षण जते को पाले तारण जो भाग्य गया था उनका आकर्षण को सन्यास कर प्रभु आप आसंदी कर्मी निंद का दिया तो सारा आशी प्रभु पाय हय अपना तो अपराध कमाइल डूबिल प्रेम जले सेवा हेरा प्रभु प्रेम महाजल जब महाप्रभु का चरण में किसी आत्मसरण किया तो महाप्रभु सब काल हम बारह
चंद्रमा
से क्या शिक्षा है
জ্বর শরীর চাঁদের মতো এখন বাড়তে পারে কমতে পারে তার জন্য প্রভাবিত
চন্দ্রমাজিস্তর বাড়তে কমতে স্তর হবে শরীর এম এম ও ওষা সমুদ্র থেকে শিক্ষা ওষা গভীর বহুত কিছু থাকতে সাধু ব্যক্তি বহুত গম্ভীর স্থান শুরু থেকে শিক্ষা মেলা জল শেষণ কারণে বাথরুমে পানি সাধু লোক যো কিছু দিতে হয় গ্রহণ করতে হ্যাঁ জব জরুরি সব বিচার করতে सभी को कोई देगा तो ग्रहण करना चाहिए फिर जब समय आ गया सब वितरण भी करना चाहिए रखना नहीं चाहिए स्थान और एक स्पाइडर मछली से कैसी सेवा इस तरह उधर से जल बनाता कि जल हमें भगवान से सारी जगह खींचते भगवान भगवान शर्त कार्पेंट साफ के पास क्या शिक्षा हुआ अकेला अकेला चलना चाहिए
अपना कोई घर नहीं
एक कुंड है साफ इस तरह चलते किसी को पता नहीं चलते है तो साधु व्यक्ति इस तरह चलना चाहिए ढाक ढूल भी टेकना दूसरा है
उसको कुछ पर्सनल मौका नहीं है
खुद को भी घर नहीं बनाते तो छवि को खुद के लिए इतना सोचना नहीं चाहिए, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, उम्र हो जाएगा कौन देखेगा। और एक केस किया आकाशे कैसे की शिक्षा हो गई आकाश को, आकाश में अंदर कितना बादल, कितना हवा, कितना कुछ हो रहा है आकाश इसके द्वारा प्रभावित नहीं है। और आकाश को कभी खंडन नहीं, खंड खंडन नहीं करते। इसी तरह जीवात्मा को कभी जीवात्मा को भौतिक जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। और अविभाज्य डब्ल्यू से भ्रमर, भ्रमर से क्या शिक्षा होगा, क्रिया को पकड़ा था भ्रमर, वो फिर डर में था कब मुझको खाएंगे, तो कहो उसको चिंता करते करते उनको
उसी तरह
पंखा आ गया। इसलिए हम यदि निरंतर भगवान का चिंतन करेंगे तो हमें शरीर शक्ति का मना होगा। और क्या हमने नीला कर दिया, मनोनिवेश करना चाहिए। जब तीरंदाज जो तीर बनाते हैं लेकिन स्टेज हो गई नहीं, तो पास में कोई राजा उनको ढाक ढोल पीटे के जाए उसके कारण नहीं है। इसी तरह जो भगवत का अवसर तुमको उसका मन इतना नियंत्रित होना चाहिए कंसेप्ट के, तो दूसरा बाहर बाकी जगत कोई शब्द करना नहीं है। और लास्ट में आ रहे हैं कि 26 गुरु और लास्ट में आकर और एक बार गुरु है हमारा शरीर, खुद का शरीर इससे कुछ प्रेम हम काल उसके पाएंगे। और कल आदित्य गुरु का ये दत्तात्रेय को उपदेश किया था, व्रत में देखा ये जो ब्राह्मण है तो आचार्य जी लोग ने कहा, यदि भागवत डायरेक्ट लिखा नहीं है, सिद्धार्थ स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शिकार के दिए ब्राह्मण उन्होंने दत्तात्रेय का अवतर, क्योंकि जदु जदु का जो गुरु है दत्तात्रेय, तो जदु जब इनके पास ज्ञान प्राप्त हो गया जदु यही दत्तात्रेय भगवान का होता है उनका ही होता है। ये जो उपदेश दत्तात्रेय को बोले आचार्य जी ने इसको स्वीकार किया। आज हम
एक प्रश्न, बहुत सुंदर सुंदर जो उपदेश है सभी को कैसे चलना चाहिए, लेकिन इस पर में रहते हुए इसको फॉलो करना कुछ कुछ जो है मुश्किल है।
हाँ, केवल इसके में हर जीवन में हर पदक्षेप में इंडिसिशन दुविधा आते हैं, इंडिसिशन आते हैं, इसीलिए जिसे हम सब समाधान नहीं कर पाएंगे वैष्णव गुरु का आश्रय लेना चाहिए। इस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो शास्त्र में बहुत सारे निर्देश है क्या करना चाहिए। जिस तरह गुरु महाराज ने कहा शुभ शुभ शोलमाला खत्म करना चाहिए, और गुरु महाराज के साथ कोई जाकर गया तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सुबह 7 बजे के पहले शोलमाला खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक दिन सुबह 8 बजे फ्लाइट 6 बजे निकलना, गुरु महाराज का गुरु जल्दी इसको ब्रेकफास्ट बनाओ, आप तो खाने का टाइम नहीं होगा, तो ब्रेकफास्ट बना के हम साथ में लेके जाएंगे, नहीं गुरु महाराज 7 बजे पहले शोलमाला करना पड़ेगा ना, तो अभी सब खाना वाना कैसे चलेगा। तो क्या गुरुदेव क्या गलत इंस्ट्रक्शन दे, पहले एक दिया दूसरा अलग दे रहे हैं, तो इस तरह नहीं है। जब गुरु महाराज पहले एक दिन बोला शोलमाला पहले करना चाहिए, उसके बाद दूसरा काम आज बोले पहले खाना बनाना बाद में शोलमाला करेंगे, ये क्या हो रहे हैं। यदि हम समझने दिक्कत रहेगा तो साधु गुरु का इस स्थिति में क्या करना चाहिए। ये शास्त्र लगा घर नहीं बनाना चाहिए, वो बात उनके लिए से मकान बनाना है, पुण्य शास्त्र जो मकान नहीं बनाना चाहिए घर बने हैं तो क्या क्या शास्त्र का उल्टा चल रहा है, इस तरह तो उल्टा चल रहा है। अल्प बुद्धि संपन्न लोग इस तरह बात कहेंगे, वो बात तो चैलेंज किया, आप इतना बारह बारह मंदिर क्यों बना रहे तो पूरा दिन मेरे नहीं तुम्हारे लिए मैं तो घर मंदिर मकान सब के पेड़ के नीचे रह सकते, लेकिन तुम लोग नहीं रह सकते, तुम्हारे बना रहा
पहले
से सबसे 99% जब से तो हम अष्टम पूजा क्यों करेंगे, बुद्धि से क्यों करेंगे, 99% की 1% की इतना खरीद करेंगे तो आप आज हम पढ़ेंगे एकादश स्कंद उद्देश्य शाब्दिक ओइलोगी। ये इतना गुरुत्वपूर्ण है, भगवान जब ये जगत से चले जा रहे थे तब उद्धव को ये उपदेश देके जा रहे हैं, तो आदमी जब मरने के पहले उपदेश दे तो कितना पावरफुल इंस्ट्रक्शन है तो कृष्ण जगत से जा रहा है तब तो उपदेश दे रहे हैं तो कितना पावरफुल इंस्ट्रक्शन होगा। और ये भी उपदेश बहुत है, लोग लगभग आखिरी उपदेश आखिरी एक स्टोरी बोल के खत्म कर रहे हैं, तो ये उपदेश कितना गुरुत्वपूर्ण है सबके व्यक्ति के लिए। कृष्ण जा रहे हैं ये जगत से उद्धव को उपदेश देकर जगत को उपदेश देना चाहिए, तो आखिरी एक एग्जाम्पल दे रहा है, तो ये कितना गुरुत्वपूर्ण है तो हम समझना चाहूँ वो आज वो देखेंगे क्या है कर रहा है। उद्धव को भगवान कह रहे हैं 26 अध्याय तो भगवान उद्धव को कहा इस मनुष्य जीवन को जो मनुष्य को मेरा साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करता है वो पाकर और मेरी भक्ति में स्थिर होकर मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है, जो कि समस्त आनंद का आगाज तथा हर जीव के हृदय में बस करने वाला परमात्मा स्वरूप है। ये मनुष्य जीवन का गुरुत्व वर्णन करता है, ये मनुष्य जीवन में भगवत भक्ति करना लब्धा सुदृढ़ लभम इदम बहुत सुंदर, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ बहुत जन्म बहुत संभवान थे बहुत जन्म को मिलते, और सारे जीवन में इंद्रित्व करने का मौका मिलते हैं, लेकिन कृष्ण भावना लाभ करने के बाद मनुष्य जीवन में दिव्य ज्ञान में स्थिर व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों के फलों से अपनी झूठी पहचान त्याग कर बौद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है, इन फलों को मात्र मोह समझकर उन्हें के बीच निरंतर रहते हुए भी और प्रकृति के गुणों में फंसने से अपने को बचाते हैं, क्योंकि गुण तथा उनके फल सत्य नहीं होते और वह उन्हें स्वीकार नहीं करते। मनुष्य ये कर सकते लेकिन भगवत भक्ति लाभ कर सकते, लेकिन उनको संग असत संग के कारण उनका पतन हो जाता है, इसीलिए कृष्ण ने कह रहे हैं मनुष्य को कभी ऐसी भौतिकतावादी की संगति नहीं करना चाहिए जो अपने जननांग तथा उदर की तृप्ति में लगे रहते हैं। उनका अनुसरण करने पर मनुष्य अंधकार के गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं, जिस तरह एक अंधे व्यक्ति द्वारा दूसरे अंधे व्यक्ति का अनुगमन करने पर होता है। तो कृष्ण उद्धव को उद्धव ईश्वर व्यक्ति नहीं महान भक्त है, लेकिन उद्धव को माध्यम हमको की शिक्षा देते हैं। संगम न कुर्जा असतान शिष्ण द्वारो त्रिपांग पचित कभी पचित अच्छा कभी भी उसके संग नहीं करना। किसका? शिष्ण द्वारो, शिष्ण और उदर, पेट एवं उदर, ये दोनों के जो जो मग्न है इसके कभी संग नहीं करना चाहिए। संगम न कुर्जा असतान शिष्ण द्वारा त्रिपांग पचित, जो पेट एवं जननी का चिंतन करते हैं कभी भी क्वचित शब्द का कभी भी उनका संग नहीं करना चाहिए। संग कहने क्या तस्या यदि अनुगम उसको यदि अनुगमन करेंगे तमस्य अंध पतती अंध अनुगम अंधवत, इस जो शिष्ण और उदर परायण है वो कहाँ चल रहे हैं, वो कौन है, वो अंधे व्यक्ति, उनको अनुगमन करेगा तो क्या होगा, वो जो गड्ढे में गिरेगा हम भी गड्ढे में गिरेंगे। तो ये चीज समझाने के लिए कृष्ण ने एक उदाहरण दिया है। निम्नलिखित गीत सुप्रसिद्ध सम्राट पुरोरव द्वारा गाया गया था। अपनी पत्नी उर्वशी से विलग होने पर सर्वप्रथम संभ्रमित हुआ, किंतु अपने शोक के वश में करने से वह विरक्ति का अनुभव करने लगा। एक महान राजा नाम पुरोरव, उन्होंने सोम का पुत्र भूत, भूत का पुत्र है पुरोरव, भूत ओइलो नाम एक ओइलो का शादी करने से ओइलो और भूत का संतान, इसलिए पुरोरव का अलग नाम है, सॉरी इला और भूत का संतान पुरोरव, इसलिए उनका नाम ओइलो, ओइलो अर्थात इला का संतान, उनके माँ का नाम, इसलिए पुरोरव का और एक नाम ओइलो। ओइलो जो गान गाया है उसके बाद ओइलो गीत, जिसे भगवान कृष्ण ने गान गाया, उसका नाम भगवत गीता, तो कृष्ण ने उनका गीत सुन दिया, ओइलो का गीत गाया है ओइलो गीत। तो उन्होंने पहले उर्वशी उनको देख के आकृष्ट हुआ और उर्वशी के सामने करने ये भी आकृष्ट हुआ था, लेकिन उर्वशी जब उनके स्वर्ग गए तो उन्हें पहले बहुत भ्रमित हुआ, लेकिन बाद में उनका उपलब्धि आ गई। इससे जब वहां उसको स्वर्ग जा रही थी तो वह नांगा होते हुए भी उसके पीछे पागल की तरह दौड़ने लगा और अत्यंत दुख से चिल्लाने लगा, मेरी पत्नी और निष्ठुर नारी जरा ठहरो। इतना पागल हो गया उसमें जब संग कर रहे थे तो उर्वशी वो अवस्था में भाग गया था, तो इसीलिए नांगा होती हुई भी उनके पीछे पीछे पागल के तरह दौड़ने लगा और चिल्लाने लगा, मेरा पत्नी और ये निष्ठुर नारी जरा ठहरो, इस तरह बने। यद्यपि पुरोरव ने वर्षों तक सायंकाल की घड़ियों में जो आनंद भोगा था, फिर भी ऐसे तुच्छ भोग से तृप्त नहीं हुआ था। उसका मन उर्वशी की प्रति इतना आकृष्ट था कि वह यह भी देख नहीं पाया कि रात किस तरह आती और चली जाती है। दिन रात वो देख नहीं पाती, रात कब आते हैं, रात कब चले जाते हैं, कब दिन हुआ, इतना देखने का उनका टाइम नहीं, इतना जैसे भी पूर्व ने वर्ष तक इतना इंद्रदृष्टि किया कि दिन रात उनको उनके देखने का मौका नहीं। राजा अहिले ने कहा हाय मेरे मुंह की सीमा को तो देखो, यह देवी मेरा आलिंगन करती थी और मेरी गर्दन अपनी मुट्ठी में किए रहती थी। मेरा हृदय काम वासना से इतना दूषित था कि मुझे इसका ध्यान ही न रहा कि मेरा जीवन किस तरह बीता जा रहा है। इतना आसक्त था उनको जीवन किस तरह बीत गया उनको पता ही नहीं। मैं दुख कर रहा है, इस स्त्री ने मुझे इतना ठगा कि मैं उदय होते अथवा अस्त होते सूरज को भी देख नहीं सका। हाय मैं इतने वर्षों से व्यर्थ ही अपने दिन गवाता रहा। इस तरह दुख कर रहा है। इसके बाद बहुत दिक्कत से लगता है। अहो में आत्मसम्मोह जिनात्मा दोषिता कृतम क्रियामिक चक्रवर्ती नरदेव शिखामणि। मैंने कह रहा है मैं इतना बड़ा राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, नरदेव शिखामणि जितना सारे राजा हैं दुनिया में, जितने सारे राजा हैं उनके भी मैं राजा था। नरदेव नरदेव था अभी के अंदर देवता था राजा, तो उनको शिखा शिखा का मणि, तो इतने गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति था, चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन मैं उर्वशी के हाथ में क्रिया मृत बन गया। क्रिया मृत अर्थात खिलौना का पोषण, जिससे बानवर को खेला जाके चाहिए छल का तो हम वो करते थे। तो उर्वशी को पूरे वगैरह में उर्वशी के हाथ में इस तरह हमको खेलना पोषण बन गया। जिद्द में इतना बड़ा राजा, सारे दुनिया का राजा मेरा अंदर में, मेरा नियंत्रण में, लेकिन मैं ये उनका हाथ में खिलौना का पशु बन गया। जितने में पूछू ऐश्वर्य से युक्त शक्तिशाली स्वामी था, किंतु उस स्त्री ने मुझे त्याग दिया मानो मैं कोई घास का तिनका पुण्य हूँ। फिर भी मैं नग्न तथा लज्जा रहे पागल व्यक्ति की तरह चिल्लाते हुए उसका पीछा करता रहा। मैं इतना बड़ा राजा है और उसको तीन के तरह घास के तरह फेंक के चले गया और मैं नांगा आदमी उनके पीछे भाग रहा हूँ। मैं कैसा भाग रहा हूँ? धीरे 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 समझ में आ रहा, पहले नहीं था, जितना टाइम निकला उसने धीरे धीरे बोला। कहा मैं कहा है मेरा तथाकथित आध्यात्मिक प्रभाव बल तथा सामित्व? जिस स्त्री ने मुझे पहले ही छोड़ दिया था उसके पीछे मैं उसी तरह भागा जा रहा है जैसे कि कोई गाधा जिसके मुंह पर उसकी गाधी दुलंती छोड़ती है। कुत तस्य अनुभव सत्यमेवा जो अन्नवत्सम स्त्रियां जानती खरवत पादतारित खरत है गाना। कुत तस्य अनुभव मेरा क्या अनुभव हुआ आज तक? वो स्त्री मेरे तेज ईश्वर मतलब तेज ईश्वर स्वामित्व में सब नियंत्रण करता था, मेरे इतना तेज ईश्वर है कहा है? जो अन्नवस्ती स्त्री जानते जो स्त्री पीछे जा रहा है, मैं पीछे बजा वो पीछे गाधे का लाठी मार रहा है, मैं पीछे भाग रहा हूँ उनके पास, फिर अभी तक मेरा होश नहीं हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ? कुदरत का अवश्य मेरा कहा अनुभव कि मेरा तेज कहा मेरा ईश्वर तो ये कहा गया जो अन्नवत्सम में भाग रहे थे स्त्री हम जानती जो स्त्री जरा तो उसके पीछे पीछे फिर वो स्त्री से खरवत पादोतारित गाधी जिस तरह गाधा को तेज से लात मारते थे और गलत से हाँ ये मुझसे कितना प्रेम कर रहे हैं, मैं भी उसके लिए भागता हूँ। तो उसके बाद बताए किंग विद्या किंग तपसा किंग त्यागे नो श्रुति नवा किंग विविक्त न मौने नो स्त्री दश मनोरितम। तो पूरे कहता किंग विद्या, विद्या से क्या फायदा, किंग तपसा तपस्या करने से क्या फायदा होगा, किंग त्यागे न त्याग करने से क्या फायदा होगा, श्रुति नवा बहुत शास्त्र पढ़ से फायदा क्या है, किंग विविक्त ने अकेला अकेला निर्जन रहने फायदा क्या है, मौने नो मौन मन क्या फायदा है, स्त्री दश्य मनोरितम जिनका मन स्त्री ने हरण कर लिया है उनको इसका करना फायदा क्या है, उसका जितना बुद्धि कोई काम में नहीं लगेगा, तपस्या कोई काम में नहीं लगेगा, त्याग कोई काम में नहीं लगेगा, वो छात्रों के काम में नहीं लगेगा, निर्जन रहना और मौन अवलो कोई फायदा नहीं। तो हमें इसके पीछे यह सबके पता चलेगा या प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, हम हमारे पास बहुत विद्या है, हमारे बहुत तपस्या किया है, बहुत त्याग किया है, बहुत शास्त्र बालन है, निर्जन रहता है मूल अवलंबन, लेकिन हृदय यदि पहले स्त्री ने चुरा लिया था तो कोई ऐसे फायदा नहीं। तो मेरा पीछे पीछे बोलिए किंग विद्या किंग तपसा
किंग विद्या किंग तपसा
किंग त्यागेन श्रुतेन वा
किंग त्यागेन श्रुतेन वा
किंग विविक्तेन मौनेन
किंग विविक्तेन मौनेन
स्त्रीभिर्जस्य मनोरितम्
स्त्रीभिर्जस्य
मनोरितम्। तो किं विद्या किं तपसा
किं विद्या किं तपसा किं विद्या किं तपसा किं विद्या किं तपसा
किं त्यागेन श्रुतेन वा
किं त्यागेन श्रुतेन वा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं त्यागेन श्रुतेन वा
किं विविक्तेन मौनेन
किं विविक्तेन मौनेन किं विविक्तेन मौनेन किं विविक्तेन मौनेन
श्रीभिर्जस्य मनोरितम् किसको
किं विद्या किं तपसा
किं विद्या किं तपसा
किं त्यागेन श्रुतेन वा
किं त्यागेन श्रुतेन वा
किं विविक्तेन मौनेन
किं विविक्तेन मौनेन
श्रीभिर्जस्य मनोरितम्
किं विद्या किं तपसा
किं विद्या किं तपसा
किं त्यागेन श्रुतेन वा
किं त्यागेन श्रुतेन वा
किं विविक्तेन मौनेन
किं विविक्तेन मौनेन
त्रिभिर्जस्य मनोरितम्
त्रिभिर्जस्य मनोरितम्
किं विद्या किं तपसा
किं विद्या किं तपसा
किं किं त्यागेन श्रुतेन वा
किं त्यागेन श्रुतेन वा
किं विविक्तेन मौनेन
किं विविक्तेन मौनेन
श्रीभिर्जस्य
मनोहितम्
मनोहितम्
श्रीभिर्जस्य मनोहितम्
तो उसका नेक्स्ट श्लोक कहता है, अच्छा इस श्लोक में तात्पर्य में कहते हैं भक्ति सिद्धांत शास्त्री भी कहते हैं, तो इसे ये जो विद्या तपसा त्याग श्रुति विविक्त मौन नहीं तो फिर कुछ तो जाएगा ना कैसे, यदि वृंदावन का गोपिका जिस तरह कृष्ण को प्रेम किया उस तरह से कृष्ण का प्रेम कर सके सभी जाएगा सभी समझ, गोपिका लोग कृष्ण को जिस तरह प्रेम किया हम यदि इस तरह प्रेम करें सब एक काम हो सके। नेक्स्ट श्लोक स अर्थस्य अकोविदं धिक् माम मूर्ख अपंडित पंडित मानिनम जो अहम ईश्वर दाम प्राप्त स्त्री गोखर वीत तो धिक्कार है मुझे, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैंने यह भी नहीं जाता जाना कि मेरा लिए क्या अच्छा है। मैंने तो उद्धत भाव से यह सोचा था कि मैं अत्यधिक बुद्धिमान हूँ, जब भी मुझे स्वामी का उच्च पद प्राप्त हो गया, किंतु मैं स्त्रियों से अपने को परस्त कराना रहा मानो में कोई बेल या गाधा हूँ। हर आदमी खुश खुशियां सोचते हैं पंडित मानी पूर्व करना है, हाँ मैं जीवन का मेरा खेल होते वही मेरा पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन खुद खुद को पंडित मानी ना मैं सोचता मैं कितना ज्ञानी आदमी हूँ। और मेरा जीवन किस तरह है, वो खराब बालक गाधा की तरह है, बलोद और गाधा उनको रमणी के पास जाना चाहते हैं बार बार पाजी फिर भी उनके पीछे जाते हैं। तो एक खुद के जीवन को उद्देश्य कोई पता नहीं, लेकिन हम से सोचते हैं क्या कितना ज्ञानी है। शारदा गोस्वामी ने इस तरह कहा, उन्होंने दिनों तक सब कहा कि आमी कहने आमा जारे सब यहाँ नहीं जानी करते मैं कौन हूँ कि उसका पिता दुख कष्ट दे रहा है, मैं नहीं मेरा पता है। लेकिन गामो गावारे पंडित आदमी में पंडित कहता है आदमी से, तो हाँ मैं कितना पंडित हूँ, गांव का आदमी उसके पंडित बोलता मैं पंडित ही सोचता हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ मैं क्यों दुख भोग रहा यही मेरा पता नहीं, ये लाश तो दूर करवा क्यों दुख भोग रहा हूँ, लेकिन फिर मैं सोचता मैं कितना ज्ञानी है। यद्यपि मैं उर्वशी के होठ के तथाकथित अमृत का सेवन वर्षों तक कर चुका था, किंतु मेरी काम वासनाएं मेरे हृदय में बारंबार उठती रही और कभी तुष्ट नहीं हुई। जिस तरह घी की आहुति डालने पर अग्नि कभी भी बुझाई नहीं जा सकती, पुंशला अपहरितम चित्तम कौन अन्न मोचितम प्रभु आत्म आराम ईश्वरम ऋति भगवंतम अधक्षरम। चौदह नंबर शिवत वर्ष पुगान में उर्वशा अधरा शवम न त्रिपति काम वन्नी आहुति भी जथा वन्नी आहुति भी जथा कर सेवो तो वर्ष पुगान में वर्ष पुगान था बहु वर्ष तक मैं बहु वर्ष तक सेवा के किस तरह सेवा किया उर्वशा अधरा शवम आशव था अशवम हाँ अमृत आश्रम मत था अमृत अधर आश्रम मत था अधर अमृत हाँ जिस तरह बोले अधर अमृत पान का भगवान भगवान का महापर्व क्यों खाएंगे भगवान का अधर लाल भोग के साथ लाके इसलिए भगवान को बोला भगवान अधर अमृत पान का तो ये उर्वशी का अधर अमृत पान का उर्वशा अधर आश्रम तो उन्होंने कहा है मैं उर्वशी का अधरामृत है मैं वर्ष है कितना सालों तक अधरामृत पान किया तो उनका लाल पान किया है लेकिन प्रेम के कारण हो उसको अमृत के समान उनका टेस्ट लगा सेवा तो वर्ष उगन में उर्वश्य अधरा शवम मैं कितना बहुत साल तक उर्वशी का अधरामृत पान किया लेकिन ये तात्पर्य को तथाकथित अधरामृत कहा है लेकिन यह तो तथाकथित नहीं कहा शलभ ने पूरे अधरा शब्द में कहा এখানে আসম মানে অমৃত, দেখো যেমন অধরামৃত অধরাসম অসম নৃপতি আত্মভু, লেকিন ইতনা অমৃত পান করলে মেরা সন্তুষ্টি নেই কাম বর্ণিত আহতি ভি দশা জিস আগ মে ঘি ডালনে সে আর কবি বুঝতে নেই অধরামৃত তথাকৃত অধরামৃত পান করলে সে মেরা কাম নষ্ট নেই जो भौतिक अनुभूति के परे है और आत्मारा मुनियों के स्वामी है उन भगवान के अतिरिक्त मेरा इस चेतना को जो वेश्या के द्वारा चुराई जा चुकी है भला और कौन बस इतने बार उनको सिद्धांत किया है इनके बाद पूरे सिद्धांत किया है पूरा क्या कर रहा है जो इतना बड़ा चक्रवर्ती नरोदी के शिखामणि राजा है उन्होंने कौन में अभी उनको कौन बता सकता कौन बता सकता अभी इतना और कोई राजा है शक्तिशाली राजा है उनका हालत यह हो गया ताकि उनको कौन बता सकता ये उनके बड़े कोई है कुछ है भगवान से भी क्यों उनके मालूम है मेरे से बड़ा कुछ तो कोई है नहीं अभी मुझसे कौन बदल सकते भगवान ही को बदल सकते क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि को मन में बनाने दिया मन ने दिया और चूंकि मैं अपनी इंद्रियों के वश में नहीं कर सका इसलिए मेरे मन का विचक मोह मिटा नहीं यद्यपि उर्वशी ने सुंदर वचनों द्वारा मुझे अच्छी सलाह दी थी पहले उर्वशी में बहुत सारा कहा था कि मुझसे विश्वास मत कर मैं आदमी सबके जाऊंगा लेकिन वो सोचना है जैसे भी मेरा मस्कर आ रहा है लेकिन वो बात का विश्वास क्या लेकिन आज समझ गया हाँ जब इस तरह ठग गया तब सोचा अरे हाँ उसी टाइम जिस तरह बोला था सबकी नहीं जान रहा था भला मैं अपने कष्ट के लिए उसे कैसे दोष दे सकता हूँ जबकि मैं स्वयं अपने आध्यात्मिक सरब से जन मैं अपनी इंद्रियों के वश में नहीं कर पाया इसलिए मैं उस व्यक्ति का तरह हूँ जो निर्दोष रस्सी को ब्रह्म अक्षर को समझ बैठता था पहले तो उर्वशी को दोष देता था उर्वशी मेरा जीवन खत्म कर दिया मेरा उनके लिए दिन के बाद रात रात की वजह पता नहीं था अभी मुझे चीट किया उसको यह होना चाहिए बहुत है लेकिन अभी समझ गए नहीं उनके कोई दोष नहीं है एक रस्सी का कोई सांप मन का को डरेगा तो रस्सी का दोष नहीं सुनो नहीं सर सत्र उर्वशी का कोई दोष नहीं आखिर यह दूषित शरीर है क्या इतना गंदा तथा दुर्गंध से भरा हुआ मैं एक स्त्री के शरीर के सुगंधित तथा सुंदर से आकृष्ट हुआ था किंतु आखिर वे आकर्षक शरीर है क्या वे माया मोह द्वारा उत्पन्न छद्म आवरण ही तो है आखिर ये शरीर क्या है तो ये तो क्यों मैं इसके प्रति आकृष्ट हुआ था अभी इन्होंने उसने पूछा ये शरीर किसका है ये शरीर किसका है ये शरीर किसका पूछ रहा है प्रश्न आया उनको पित्रो ये शरीर का मेरे पिता का पिता बोला है मेरा बेटा है हम कोई जगह मर जाएंगे पिता क्या पता मेरा लड़का है धर्म लाश ले जाओ पित्रो किन स्वर्ण भाग्य न कि स्त्री का स्त्री कहना मेरा स्वामी है स्वामी नो अग्नि न कि इसको अग्नि क्या है अग्नि तो खा लेते मरने के बाद इसके स्वामी कौन है अग्नि शव के कुत्ता खाने के मरने के बाद कुत्ते भी खाते अगले नहीं मैं देखा इसके मेरा खाना गृद्ध है शकुन गृद्ध है सीमात मनो किम सुविधा मिति जो नावशीयत तो ये शरीर किसका है क्या मेरे रिश्तेदार का बंधु बांधव कि अग्नि का कि कुत्ते का कि गिरजा का कि पिता का किसी के शरीर किसका है, अभी खुद को उन्होंने पूछा। तस्मिन कले बरे मध्य तस्मिन कले बरे अमित तुच्छ निष्ठ विषद जाते अहसुभद्रम सुनसम सुस्मित मुखम स्त्री। जितने भी हम जानते हैं शरीर किसका है, यदि ये तो मेरा नहीं है, क्या मेरे पिता के माता की स्त्री का कि आग का कि कुत्ता का कि शकुन का, लेकिन इतना जानने के बाद फिर जब हम अपनी स्त्री को देखते हैं, हाँ कितना सुंदर है, नाक कितना अच्छा है और कितना अच्छा हंसी देते हैं, इस तरह देखते हैं, सुनौसम नाक कितना अच्छा है, सुभद्रम देखने बहुत खूबसूरत है, सुस्मितम सब मुखों में सेवा कितना अच्छा हंसी देते हैं। वसन से श्रवणान्वित शरद पद्म उत्सव वक्त्र वशिष्ठ श्रवणान्वित शरद पद उत्सव वक्त्र स्त्री के मुख देखने किस तरह शरद कालीन शरवारे पद्म फूल की तरह शरद पद्म उत्सव वक्त वशिष्ठ श्रवणान्वित बात क्या कहता है कान में अमृत है वशिष्ठ श्रवणान्वित लेकिन हृदय क्षीर धाराधाम हृदय रिजर्व की तरह छात्र को भी निश्चित हूँ इसका निधि का हृदय कौन समझ सकते हैं हंसी इतना अच्छा करता है बात इतना अच्छा करता है हृदय में तो अभी बोला ये छोरी कैसी तैयारी है तो ये पुस्तक मत देना, मैं आपको बोलता हूँ आपको आंसर देना पुस्तक में क्या ये जो मनुष्य शरीर है चर्म मांस रक्त स्नायु चर्बी मज्जा अस्थि विष्ठा मूत्र पूर्ण इस तरह शरीर है तो उसके प्रति जो आकृष्ट है तो उसको क्या कहा जाता है समझ गया जो इस तरह शरीर में आकृष्ट उसको क्या कहा जाता है तो यह कहा है कृमि नाम क्यों तो अंतरम कृमि है क्रिया है उसके साथ भरा किया है वो जो क्रिया क्रिया क्या करते हैं स्कूल में पूल में अंदर खेल रहा है मजा घूम रहा है हाँ उसके बाद आकृष्ट है तो कृमि नाम क्यों तो अंतरम कृमि से और भरा क्यों विश्वास में कृमि से कर रहे हैं तो मांस रुधिर स्नायु मेघ मज्जा अस्थि संगत बीतमूत्र कुए रहता कृमि नाम क्यों अंतर यदि बीत मतलब मल पुए अर्थात पुष्पात रहता एर मजा हम रमन करेंगे तो कृमि नाम क्यों अंतर तो हम यदि उस तरह मजा में रहेंगे तो हमें कृमि से फर्क क्या है कृमि हिंदी क्या है कीड़े मकर सामान्य कीड़े मकड़ो तथा उन व्यक्तियों में अंत ही क्या है जो चमड़ी मांस रक्त पेशी चर्बी मज्जा हड्डी मौल मूत्र तथा पीव से बने इस भौतिक शरीर का भोग करना चाहते हैं तो एक बार बोलिए सुनो तक मांस रुधिर स्नायु मेद मज्जा अस्थि संहत बीतमूत्र पुएरता कृमि नाम कियतंतरम लास्ट दो लाइन थोड़ा तीन बार बोलना बीतमूत्र पुएरता कृमिनाकियतंतरम शरीर के वास्तविक प्रकृति के सिद्धांत रूप में जानने पर भी व्यक्ति को कभी भी स्त्री या स्त्रियों के में लिप्त रहने वाले पुरुष के संगति नहीं करना चाहिए। आखिर इंद्रियों का उनके विषय से संपर्क अनिवार्य रूप से मन को विचलित कर देता है। तो इन्होंने पूर्व ने इतना उपलब्धि बात क्या कहा, जो इस तरह जानता है हमारे कृमि के साथ कोई फर्क नहीं है, हमारे से किसका अधिकार है कि हमारे पिता का क्या कुत्ता का क्या, यदि हम इतना समझ लिया फिर भी इतना जानने के बाद भी स्त्री और स्त्री संगी का संग नहीं करना चाहिए, क्यों इतना जानने के बाद भी इतना हम जान चुके हैं तो समस्या क्या, सभी का समस्या क्या, हम सब जानते हैं क्योंकि इंद्रिय इतना शक्तिशाली है वो बलवान व्यक्ति का मन हरण कर, इसीलिए वो पूर्व ने सजेशन दे रहा है कान में सुना नहीं कभी उसके बाद आकृष्ट होगा, कभी आप जिसको तो कभी देखा नहीं उसके बाद आकृष्ट होगा, तो इंद्रिय यदि इंद्रिय कॉन्टेक्ट में नहीं जाएगा तो वह भी बात सकते, तो सबसे अच्छा क्या है स्त्री और स्त्री संगी का संग करने वह तो दुर्गा है, वो कौन से असत्य होगा किसी के पास, इसीलिए दुर्गा। तो पूर्व बाबा ने कहा चूंकि मन ऐसी वस्तु से विचलित नहीं होता जो न तो देखी गई है न सुनी गई है, इसलिए ऐसे व्यक्ति का मन जो अपने इंद्रियों को रोकना है और तो अपने भौतिक कर्मों के कारण से रोक दिया जाएगा और शांत हो जाएगा, इसलिए क्या करना चाहिए दूर रहो। इसीलिए एक बार तो कहा कि दूसरा बात उपसंहार दे रहा है पूर्व बात तस्मा, इसीलिए तो कितना बड़े का कह रहा है और कृष्ण इसको उनको डायरेक्ट स्पीच में कोट कर रहा है, इसको कितना पावरफुल है पूर्व वर्ग का बात को डायरेक्ट स्पीच में कोट कर रहा है, तो कृष्ण का मालूम है कितना गुरुत्वपूर्ण है हमारे लिए। तस्मत संग न कर्तव्यम स्त्रीशु स्त्रीण सोचन दी, अतएव स्त्री और स्त्री संघ के संग कभी करना नहीं चाहिए। विदुषण चापी अविश्रद्ध छठ वर्ग किमु मादृशम विदुषण चापी, जो ज्ञानी व्यक्ति है उनको उन्होंने कभी इंद्रिय को विश्वास नहीं करता है, छठ वर्ग सर्व मन का ये सर्वरिपु, तो वो लोग नहीं जाया करता किमु मादृशम, तो मेरे लिए एक आम आदमी के लिए क्या कहा था, तो महान मुनि ऋषि सर इंद्रियों को जाया नहीं करता, तो मेरे एक साधारण नगण्य व्यक्ति के लिए क्या कहा था। अतः पूर्व वाक्य के सिद्धांत क्या है, मेरे पास ही बताना तीन बार तस्मात् संग न कर्तव्य,
तस्मात् संग न कर्तव्य, तस्मात् संग न कर्तव्य, तस्मात् संग न कर्तव्य,
स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियै,
स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियै, स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियै, स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियै,
विदुषां चापि अविश्रद्ध,
विदुषां चापि अविश्रद्ध, विदुषां चापि अविश्रद्ध, विदुषां चापि अविश्रद्ध,
षट् वर्ग किमु मादृशम्,
षट् वर्ग किमु मादृशम्, षट् वर्ग किमु मादृशम्, षट् वर्ग किमु मादृशम्।
यह कृष्ण ने ऐसा तक कहा है, इसके बाद किसी उनका कंक्लूजन देगा, अब पूर्व का कंक्लूजन हो गया, कृष्ण क्या कंक्लूजन देंगे ये तो हो गया, अभी कृष्ण क्या बोलेंगे,
इंद्रियों को इंद्रियों विषय के संग
कृष्ण बोलेंगे, इसलिए साधु संग खाना है, कल हम देखेंगे साधु का भाव देखे पूरा उनका हरे क्या एग्जाम्पल दिया क्या ब्रह्मचारी के लिए कितना पावरफुल उपदेश सक्सेसफुल होगा।
प्रत्यक्ष